श्रीराधिकाया दीनयस्य चोरम् श्रीराधिकाया नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् च निकृत्य पदाश्रितं जः किञ्च निकृत्य पदाश्रितं करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहोभिषणचोरः दुष्टसुतोपान जगत्त्रयेऽपि नामापि हरति अशेषं यदीय नामापि गिरिप्रसारान् अपि पापराशि आश्चर्यरूपो समानं च तथेन्द्रियाणि मनं समानं च प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव छिन्नासि घोरं जमपाशबन्धम् छिन्नासि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नासि सर्वस्य समस्त बन्धम् नैवात्मानो भक्तकृतं ध्रुवं मनमानसे तामस राशि भोरे कारागृहे दुःखमये भस्वहे चौरहारे सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पास दृढ़बन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्य चौर हृदयान् हि मोचयामि व्रजे प्रसी चौराग्रगण्य पुरुषोष्टकम् की
श्री कृष्ण स्वागत है। इस पुरुषोत्तम मास में आज से प्रारंभ कर रहे हैं सात दिन की विशेष भागवत कथा महाराज जी के द्वारा। महाराज का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराज जी के बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा श्रवण करने का विशेष लाभ है। और भागवत पुराण में से जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है वृषासुर का वध, उस प्रसंग को महाराज ने चुना है हम सबके लाभ के लिए। तो महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे। वैसे तो महाराज से परिचित है, हम सभी बहुत प्रिय है महाराज, इतने लोगों के महाराज का संक्षिप्त परिचय। महाराज ऋषि लगभग 35 वर्षों से श्री रूपा जी के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं और इन्हें वृंदावन में फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन किया। काफ़ी समय तक संकीर्तन में सेवा की, प्रभुपाद के पुस्तकों का पूरे भारतवर्ष में वितरण किया और सन 2013 में इनको संन्यास शिक्षा प्राप्त हुई परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा। उसके बाद से महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और पूरे विश्व में विख्यात हैं अपनी सुंदर कथाओं के लिए, प्रवचनों के लिए, अपने सरल व्यवहार के लिए, भक्तों से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए। और महाराज को अभी उत्तरी भारत का रीजनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि महाराज भ्रमण करते हैं और महाराज जी उनके गुरु टीवी को असिस्ट करते हैं, तो पुरुषोत्तम मास में महाराज से मैंने निवेदन किया, महाराज ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और स्तुति भगवत कथा का जो संयोजन किया वो हमारे दशा में पति प्रभु, जिनको आप दुर्गा जी के नाम से जानते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद स्वीकार करें। स्तुति कथा का संयोजन प्रभु जी ने किया, प्रभु जी की इच्छा थी कि वो भारत सत्ता करें महाराज से और मंदिर के अंदर बोली पुरुषोत्तम मास में, उनकी इच्छा पूरी हुई भगवान जी की कृपा से, तो इनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई महाराज जी का और असामी भक्तों का धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। सब भक्तों से निवेदन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक ये जो प्रसंग है बहुत ही रोचक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है और इसमें बहुत से उतार चढ़ाव है, तो बड़े ध्यान से महाराज गोपालन से इसका श्रवण कीजिए। सर बदलो बड़ा बड़ा आगे आ सकते हैं, फिर मुझे दर्शनार्थियों के प्रदर्शन करने में करता हूँ, आगे बहुत स्पेस है, सर बड़ा आगे आ जाइए, मोबाइल फोन को स्विच ऑन में साइलेंट कर दें। धन्यवाद, हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जैसे आप सबको सूचना प्राप्त हुआ है कि ये पुरुषोत्तम मास के द्वितीयार्ध में ये कथा के आयोजन किया रखा गया है, इसे तो प्रभु जी की इच्छा था कब भी करें, लेकिन हमारे महोदय रुक्मण कृष्ण प्रभु के इच्छा था कि उसको और अच्छा बनाया जाए, पुरुषोत्तम मास को चुने, इस समय को चुने और इस प्रसंग को भी उन्होंने चुने, मैंने नहीं चुना था, ये उन्हीं का ही आदेश है, हम तो पारण करने जा रहे हैं। अब ऐसे भी श्रीमद् भागवत में साक्षात भागवत के बारे में कहा गया है, स्वयं व्यास जी ने कहें कि भागवत जो है वो जूस है, फ्रूट जूस, निगम कल्प तरुर फलम, ये फल रस है और कैसे फल है ना, गलितम फलम। निगम कहते हैं संपूर्ण वैदिक शास्त्र को, अगर वैदिक शास्त्र एक कल्पवृक्ष हो और उसके पेड़ में पका हुआ जो फल हो, कार्बेट देकर नहीं, बिल्कुल नेचुरली पेड़ से पका हुआ, वो एक बार पक चुका है गलितम फलम, उसका रस, उसको अगर कोई आस्वादन करता है, चाहे ऊपर से नीचे से बाएं से दाएं से साइड से कहीं से खाए, कुछ अलग अलग टेस्ट होगा क्या, यही टेस्ट है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पके हुए वैदिक कल्पवृक्ष के फल है, तो उसको कहीं से भी खाओ स्वाद तो हुई है, उसमें कहीं अंदर नहीं है तो कहीं से स्वाद हो। तो भागवत को फलरस कहा गया क्योंकि फल रस को पीने के लिए थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा, बच्चे फल के जूस नहीं पी सकते, छोटे संतान जो हैं वो दूध पीते हैं, फ्रूट जूस पीने से पेट खराब हो जाएगा, हाँ। तो ये जो है पारमहंस संहिता जो पके हुए, इसे समझे व्यक्ति के लिए है, बच्चों के लिए तो दूध पीते हैं, बच्चे फ्रूट जूस थोड़ी पियेंगे, नहीं तो दूध क्या है, ये तो जूस है, ये तो सबके लिए नहीं है। तो जूस के लिए बोले जूस, तो ये हुआ दूध हुआ भगवद्गीता। भगवद्गीता के लिए कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीर भुक्तां दुग्धं गीतामृतं महत्। ये अमृत रूपी गीता ही दूध है, क्योंकि वहां भी यही कहा गया जैसे सब वेद साहित्य निगम कल्पतरु वृक्ष हुआ उसका फल, तो वहां सर्व उपनिषदो गाव, यहाँ सारे वैदिक उपनिषद को गाय के साथ तुलना किया गया। अरे उपनिषद रूपी गाय, गाय से वस्तु तो दूध निकलते हैं, उस ये गाय से साधारण ग्वाला दूध हम भी जिससे ट्रायल करके निकाल दें, ये तो कोई साधारण गाय है नहीं, संपूर्ण वैदिक साहित्य उपनिषद सब गाय बने, उससे कौन दूध निकालेगा। बोले इससे दूध निकालने वाले ग्वाला तो केवल गोपाल नंदन, दुग्धा गोपालन, दुग्ध दूने वाला साक्षात भगवान कृष्ण। वैदिक उपनिषद रूपी गाय से दूध निकालने वाले ग्वाला बने कृष्ण, केवल गाय हुआ दूध निकालने वाला, ग्वाला आया दूध तो तभी नहीं निकलेगा, बछड़ा चाहिए, बछड़ा कौन है ना, पार्थ वत्सः, अर्जुन बने बछड़ा, अब दूध निकलेगा, दूध को पिएगा कौन। बोले बछड़ा भी नहीं पीता है, ग्वाला भी नहीं पीता है, वो गाय भी नहीं पीता है, आप लोग सब पीते हैं सुधीर भक्त। तो इसलिए गीता है दूध, वो प्रिलिमिनरी स्टैंडर्ड का है, उसके ऊपर में ये तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं ये है हाई स्कूल स्टैंडर्ड है गीता, और भागवत है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और चैतन्य चरितमति पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। तो ये सब डिजन हो दिए हैं, तो इसके लिए ये जूस है, अभी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या कहा जाएगा अब जब आ गया समय तो बताएंगे। तो इसमें से ये जो प्रसंग प्रभु जी ने चुने, ये षष्ठ स्कंद है, पूरे भागवत अब जानते 12 स्कंद है, वो तो बिल्कुल बीचों बीच पकड़े। अगर किसी चीज से माल निकालना है तो बीच से हाथ डालकर निकालना है, इधर पक्का कच्चा का रहा होगा, बिल्कुल बीच में हाथ डाले सठा स्कंद में, और सठा स्कंद का बिल्कुल बीच में ही, इसके स्कंद को भी आगे पीछे नहीं, बिल्कुल बीच जो 5 अध्याय है 7 से लेकर 12 तक, जिनमें वृत्रासुर प्रसंग वृत्रासुर उपाख्यान का वर्णन है, अलग अलग पुराण में भागवत के जब गुणगान किया गया है उसमें कहा गया कि भागवत तो वो पुराण है जिसमें वृत्र उपाख्यान वर्णित है, वृत्रासुर को उपाख्यान। बोले क्यों ना रे, ऐसे भयानक असुर वो भी इतने बड़े भक्ति किया भगवान को, वो भी युद्ध कालीन भित्ति में लड़ाई के मैदान में मरते मरते लड़ाई करते करते ऐसे जो भक्ति प्रदर्शित किया, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना कभी हो सकता। तो इसलिए ऐसे अद्भुत घटना प्रसंग जिसमें वर्णन है वृत्रासुर के प्रसंग, वही भागवत महापुराण है, बाकी कोई पुराण में ऐसे प्रसंग वर्णन नहीं मिलता। मतलब अभी तक जितने पुराण लिखा गया संयोजन किया गया, कोई भी पुराण ऐसा प्रसंग नहीं है कि ऐसे अद्भुत भाव जिसमें वर्णन हो, ऐसे बिल्कुल विरोधी भाव संपन्न, इंद्र के साथ युद्ध करके मारना चाहता, सारे देवता ऋषि सब उनको मारने के लिए चाहते, बचना चाहते, और उसका अंदर ये दृढ़ भक्ति देखा गया, ये अति आश्चर्य है, ये अति रोचक विषय है। इसलिए अन्य अन्य पुराण में कहा गया कि भागवत का विशेषता ये है, इस पुराण में वृत्रासुर उपाख्यान वर्णन है, बड़े अद्भुत प्रसंग है असुर की भक्ति। तो वृत्रासुर उपाख्यान की शुरुआत हम प्रयास करते हैं कि वृत्रासुर को तक वहाँ वध तक ले जाएं, तो ये 5 अध्याय है, प्रयास करते हैं। तो ऐसे कथा शुरुआत होता है कि जब अंश वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते बताते चले गए कि ऐसे ऐसे दत्तपुरा कह बोले कि जो दैत्यों की एक सिस्टर थी जिनका नाम थी रोचना, उन्होंने एक देवताओं को शादी किया। बोले कभी कभी होता है, इस पार्टी के इस पार्टी में संबंध हो जाता है, भगवान ने जब से सृष्टि किए तभी से दो पार्टी किए, एक सूर्य एक असुर, एक देवता एक दानव, है ना, वो पहले से और एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल एंटीपैथी है। मतलब इससे ही पता चलता है भगवान जो भी करते हैं निश्चित पूर्ण रूप में सब कुछ करते हैं। तो पूर्णता में निश्चित रूप से अपोजिशन होना आवश्यकता है। अपोजिशन के बाद बिना पूर्णता नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने सृष्टि में शुरुआत में विरोधी दल रखे, देवता और दानव को सृष्टि किए, वो आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे देखते, अरे बोलते कि भैया उनको कहा है मेरे पीछे, उनको क्यों बनाए, नहीं बनाना जरूरी है, क्यों नहीं, शत्रु और विरोधी पक्ष के लोग अगर नहीं होंगे तो हम अपना सुधार नहीं कर सकते, हम अपना गलती अपने आप नहीं देखते कभी, और जो अपना पार्टी के लोग हैं वो तो हम जो भी करें ताली बजाएंगे, अच्छा करे बुरा करे, तो हम सुधरेंगे कैसे, तो कोई विपक्ष लोग होंगे तो मैग्नीफाइंग लेंस से हमको देखेंगे गलती है ऐसा किया, हाईलाइट करेंगे, तब हम अपना सुधार कर सकें, बैलेंस कर सकें। तो इसलिए भगवान बात को जानते हैं, इसलिए अति आवश्यक है हमारा जन्म को, हमारे चरित्र को, हमारे कार्य को अगर हम सही सही सुधारना चाहते हैं तो विरोधी व्यक्ति होना अति आवश्यक है। वो हमारे वास्तव के मित्र के जैसा काम करते हैं, हमारे सारे दुर्गुणों को साफ करते हैं। तो इसलिए भगवान ने व्यवस्था कर किए हैं शुरू से। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहे कि दैत्यों की बहन रोचना और देवताओं के वंश के ब्राह्मण जो थे त्वष्टा, उनके साथ शादी हुआ। बोले हुआ कैसे, जैसे तैसे हो गया, ये आंटी पाटी है एक दूसरे के लेकिन शादी हो गया। बोले हुआ तो क्या हुआ, ना हुआ तो क्या हुआ कि एक अद्भुत घटना हुआ। एक तो उनका रोचना के दो पुत्र हुए त्वष्टा के साथ में, एक सन्निवेश और एक विश्वरूप, दो पुत्र हुए। उनमें से विश्वरूप जो थे बड़े उत्कृष्ट ब्राह्मण हुए, बड़े तपस्वी हुए, बड़े वेदज्ञ हुए, और एक समय ऐसा आया सुखदेव जी कहे कि उनको देवताओं के गुरु बनना पड़ा। अर्जुन वाले क्यों, देवताओं के गुरु, ये तो बहुत जूनियर है, त्वष्टा के पुत्र है। बोले हाँ क्यों, क्यों देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है। बोले हाँ तो हैं, लेकिन एक ऐसा समय आया बृहस्पति ने इंद्र को त्याग दिए, देवताओं को छोड़ के चले गए, देवता लोग गुरुहीन हो गए, गुरु के बिना जो उनको तकलीफ हुआ तो दौड़ कर गए ब्रह्मा जी के पास, तकलीफ क्या हार गए, असुर लोग उनको मार पीट कर भगा दिए, तो जा करके ब्रह्मा जी के शरण में गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि जा करके दूसरे गुरु। तो जैसे प्रसंग को बोले, ये षष्ठ अध्याय के षष्ठ स्कंद के षष्ठ अध्याय के अंत में प्रश्न, तो परीक्षित महाराज बोले बाकी बात सुनूंगा बाद में, बोले सबसे पहले बताओ देवगुरु बृहस्पति क्यों देवताओं को त्याग दिए, क्या ऐसे हुआ, देवता तो देवता है, कोई आदमी तो है ही नहीं कि ऐसे ऐसे झगड़ा झाटी करते हैं, ऐसे करते हैं, उसका अंदर होता है, लेकिन वो सद्गुणी होते हैं, वो तो जानते हैं मान सम्मान के विधि, तो वो बृहस्पति के साथ क्या खटपट हुआ कि उन्होंने बृहस्पति उनको त्याग दिए, ऐसा क्या, इस बात को ठीक से बताइए। तब षष्ठ स्कंद के सप्तम अध्याय के शुरुआत से जब ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे तो इसके उत्तर से सुखदेव गोस्वामी डिटेल बता रहे हैं ये अध्याय में कि किस प्रकार देवता लोगों को आपने गुरु बृहस्पति त्याग दिए, ऐसा भी समय आता है और उसका परिणाम क्या हुआ। तो बताते हैं, कस्य हेतु परित्यक्ता सि राजोवाच, राजर्षि परीक्षित बता कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्यणात्मनो सुराः। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को परित्याग क्यों कर दिया, जो उनके ही शिष्य थे, देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन से अपराध किया, कृपया मुझे इस घटना को विस्तीर्ण भाव से वर्णन कीजिए। श्री बादरायणी उवाच, बादरायणी व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए, इंद्रस त्रिभुवने ऐश्वर्य मदो उल्लंघित सतपथः, कि इंद्र ने त्रिलोक ऐश्वर्य को प्राप्त करके मदमत हो गए और सतपथ को उल्लंघन किए। हे राजन, एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, रुभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग तथा उरग, सर्प आदि, पक्षी आदि ये सब बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन चल रहा था। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र ताना हुआ था, चावर डला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी श्री शची देवी के सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु देवगुरु बृहस्पति के प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित भी थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष आते देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठे, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया, न उनका आदर पूर्वक सत्कार किया, मतलब सम्मान सूचक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आपने बिल्कुल मशगूल थे, फेस्टिवल फेस्टिविटी चल रहा था, पार्टी, बड़ा पार्टी चल रहा था और पार्टी में सारे लोग, वो तो सबसे बड़े हैं, सबसे सीनियर अफसर हैं इंद्र, और सारे उनको सेवा कर रहे थे, नाच गान ये सब चल रहा था। इसी बीच में आचार्य बृहस्पति आए, इंद्र की नज़र पड़ा उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि वो देखे नहीं थे, वो देखे क्योंकि विशेष आसन पर बैठे जो भी आते हैं उनको नज़र पड़ता है, लेकिन आंख पड़ते क्या हुआ, हम कभी कभी देखते हैं हम सामने बैठे हैं, अगर हमारा मन कोई और जगह में लगा हुआ है, कोई आया आपके सामने कुछ लेकर चला गया, अरे ये कहाँ गया, अरे आपके सामने तक नहीं, वो आए थे क्या, अरे आप तो बैठे थे आपके सामने, दिन में तो आंख तरह खुला था, आंख तो खुला था लेकिन मन साथ में नहीं था, अनमाइंडफुल था। अगर माइंड साथ में ना हो, आंख खुला होकर देख नहीं सकते, कान खुले होकर सुन भी नहीं सकते, मन साथ में होना जरूरी है। तो इंद्र यद्यपि आसन पर बैठे थे तो इतने बड़े पार्टी के आयोजन हो रहा था, इस प्रकार वो मच गए थे, उसमें मन उसमें लगा गया था, इस भोग विलास में, यद्यपि देखे कि गुरुजी आ रहे हैं लेकिन देख कर भी अनदेखी कर दिए उनके उचित सम्मान जनित कोई भी क्रिया, उठकर खड़ा होना, सर बैठे, नथिंग, कुछ नहीं किए, रह गए। और उनको देख करके बाकी जितने देवता बैठे थे, मांडे गण्य सारे लोकपाल देवता सब बैठे थे, सार बैठे, हम भी बैठे, और किसी का नजर भी पड़ा लेकिन वो भी उठे नहीं। तो इस घटना में समस्त देवताओं के एकमात्र गुरु थे, वैसे सभी के चलाते, सभी उनके चले थे, तो गुरु होने के नाते उनको दंड देने का अधिकार उनको था, उन्होंने वहीं पर उनको अभिशाप कर सकते थे, डांट सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन देखे कि रसाभास हो जाए, ये अभी मैं डांटूंगा तब भी और कुछ कर डालेंगे, पता नहीं किस मूड में है, अब तो मेरा कहना भी कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए बड़े विद्वान पुरुष थे, सुखदेव कहते हैं कि बृहस्पति बड़े साधु और बिल्कुल विद्वान पुरुष थे, किस समयोचित क्या कार्य करना चाहिए उनको भली प्रकार पता था। बोले यहाँ अभी अगर मैं उपदेश करूंगा ये मूर्खों को, तो उनके उपदेश ही काम नहीं करेगा और कुछ उल्टा पुलटा होगा, तो मूड उनका खराब है, बिल्कुल भोग सूर्य प्रसक्ता नाम अभूत चेतसाम, उनका बुद्धि वृत्ति मारे गया है भोग विलास में, अब इसी समय उनको उपदेश क्या दो। तो इसलिए उन्होंने चुपचाप कुछ नहीं बोले, क्या बोलते हैं स्वर्ग के राजा, तब बृहस्पति ने क्या कहे, ततो निर्गत्य सहसा कबीर अंगस प्रभु, अंगिरास पुत्र बृहस्पति ने, बृहस्पति के सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार के उल्लंघन को देखकर ये पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को साप तो दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर वापस चले गए। बोले ना, यहाँ कुछ बोलना उन्हें कुछ नहीं, वो अपने करने दो, अपने घर वापस चले गए। जैसे आए थे ऐसे वापस चले गए। तब क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने वापस घर चले गए, तरहेव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनमात्मन। अरे गुरु के प्रति अवहेलना, गुरु जी आए थे चले गए क्या? इंद्र तो देखा था, बोला तो गुरु जी आए चुपचाप बैठे होंगे, डांस देखेंगे, सीट तो खाली था, कोई सीट खींच कर बैठ कर डांस देखेंगे, लेकिन बैठे नहीं। इंद्र देखा था, थोड़ी देर में फिर नजर गुरु जी बैठे नहीं, कहाँ चले गए। जब देखा कि है नहीं, तुरंत उनको तुरंत चेतना आया, हो ना हो इंद्र तो है ना। तरहेव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनम आत्मना गर्हयाम आस सदसी स्वयं आत्मनम आत्मना। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपने भूल समझ ली। जो बड़े आदमी होते हैं गलती करते हैं, लेकिन गलती के एहसास तुरंत हो जाता है उनको। तुरंत गुरु के गलती समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु के निरादर किया है, उन्होंने इस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपना भर्त्सना की। देखिए ऐसे करते, जब इंद्र को पता चला कि तुरंत तेरे गुरु के प्रति अनादर हो गया, निरादर हो गया, वो चले गए, तुरंत सभी के सामने उस पार्टी के बीच में खड़े होकर के अपने को भर्त्सना करने लगे। कैसी भर्त्सना किए, अहो बत्मया असाधु कृतं वैद दभ्र बुद्धिना, अहो आपने अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के बस में होने के कारण मैं क्या कर लिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार भी नहीं किया, सचमुच मैंने उनका निरादर ही किया। यद्यपि मैं सतगुणी देवताओं के राजा हूं, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित हो गया। भला ऐसी दशा में कौन ऐसे ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय हाय, मेरे धन अब ऐश्वर्य को धिक्कार है। अधिकार करने लगे पोस्ट पोजिशन को, बोले क्या होगा अभी त्रिपिष्ट पंग, ये सारे तो पतन हो जाऊंगा मेरा, गुरु अवहेलना हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चेतन महाप्रभु ने यही शिक्षा देते हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग वा जगदीश कामये। बोले हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए, अगर वो आ जाते हैं तब बुद्धिवृत्ति ठीक से काम नहीं करता है। अगर कोई भोग ऐश्वर्य खराब नहीं है, लेकिन कोई आसक्त चित्त वाला के पास आता है तो उनके लिए विष बन जाता है, और कोई शुद्ध चित्त अनासक्त पुरुष के पास वो ठीक काम करता है। तो इसलिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन के अनुसार वो कार्य करता है, उनके दोष नहीं है। और जो ये भोगी आसक्त पुरुष उनके हाथ में चीज आ गया तो उसको मिसयूज करेंगे, वही आलू इस बात करें। यह पारंगष्टम धीषणी तिष्ठन्न कंचन जदि कोई यह कहे। बोलते हैं कि इंद्र फिर ये भी सोचा, बोला ये तो है लेकिन उनको भी सोचना चाहिए, मैं देवताओं के राजा हूँ, संपूर्ण त्रिपिष्टपम तीन लोक के अधिपति राजा हूँ, और मैं पार्टी में हूँ और सभी के सामने बैठा हूँ बड़े आसन पर, अभी कभी आए कभी कभी हमेशा मुझे उठना ठीक नहीं है, ऐसे भी कुछ बताते उनको सलाहकार थे उनको बताते। बोले सारे ऐसे क्यों आप मानते हैं, आप बड़े हैं, आप जब पोस्ट में बैठते हैं सीट पर हमेशा हमको उठना नहीं चाहिए। ऐसा भी कभी कभी नीति वाक्य में सुनते हैं, कभी कभी बड़े पोस्ट के अधिकारी लोग जब आप आसन पर बैठे हैं तो कोई लोग आए उठना जरूरत नहीं है। बोले हाँ, कोई और लोग आए तो आपको हमेशा उठने का जरूरत नहीं, लेकिन कभी आपका स्वयं गुरुजन लोग आ जाए, अति सामान्य व्यक्ति आ जाए तब तो उठना चाहिए। नहीं नहीं, व्यास आसन में बैठा हूँ, विचारपति आसन में बैठा हूँ, तब कैसे उठूंगा। यही एक विचार हुआ था जब श्री बलराम, जो वास्तविक प्रथम एकमात्र आचार्य जीव के आचार्य हैं, वो जब तीर्थाटन में गए थे, नवीशारण्य में पहुंचे थे, तो वहां जो यज्ञ क्षेत्र में हजारों संख्या में ऋषि मुनियों के ऊपर श्री सुत रोमहर्षण सुत उन्होंने बैठ करके ये प्रवचन दिया करते थे। व्यासासन पर बैठे थे व्यासपीठ, तो सभी नीचे बैठ कर सुन रहे थे। तो इति अवसर में श्री बलराम पधारे। जैसे बलराम जी को आए देखे, सारे बड़े बड़े ऋषि हजार सब खड़े हुए, बलराम जी हरे बलराम सब खड़े हुए, बहुत सीनियर सीनियर थे सब खड़े हुए। लेकिन रोम हर्षण सूत्र देखा, बोले मैं तो व्यासपीठ बैठा हूँ, प्रवाचक हूँ, वो नहीं उठे, वो नहीं उठे। तो बलराम जी ने बोले, अरे ये वक्ता कौन है, मैं आया और कोई दूसरे को आया नहीं उठे, मैं आया हूँ, मुझे नहीं पहचाना, क्या भागवत पाठ कर रहा है बोल रहा है। तो भगवान बोले कि वो तो स्वयं आचार्य है, मुझे सिखाना चाहिए। तत्क्षणात् उसे ग्रास उखाड़ करके फेंक दिए, वहीं मर्डर हो गया, मर गया। तो भगवान तुरंत दंड दिए। अगर कोई ऐसे सोचे, यहां भी इंद्र को कोई बताते हैं, बोले सर आप इतने बड़े पोजिशन सीट में है, हमेशा सब जाकर थोड़ी उठेंगे, कोई आ गया तो ऐसे उठना क्या, ठीक है देख लिए वो अपना काम कर। तब इंद्र बोलते नहीं, कभी कभी ऐसे सलाहकार बहुत मिलते हैं, बता दो हाँ ऐसे थोड़ी ऐसे उठना चाहिए। बोलते ऐसे जो सलाहकार मिलते हैं वो लोग सलाहकार कैसे हैं, उनको बोले सत धर्म का ज्ञान नहीं है, वो सलाह इस प्रकार देते हैं जैसे बोलते हैं हाँ जी नौका पार कर लो, नौका नदी तो है, नौका पार कर, कौन सा नौका लाए, पत्थर के बना हुआ नौका, अस्म प्रबम, ये सलाहकार ने पत्थर के बना हुआ नौका लाते हैं। पत्थर के बना हुआ नौका कभी देखे आपने, अगर नौका नदी में तैरेगा और नौका भी डूबेगा, उसमें जो जाएगा वो भी डूबेगा, जो लाया वो भी डूबेगा नाविक के सहित। तो बोलते हैं इसी प्रकार जो असत सलाह देते हैं इस प्रकार को मान्य नहीं करना चाहिए। ऐसे संसार में बहुत दुष्ट सलाहकार मिलते हैं जो कई प्रकार से युक्ति बताकर बोलते हैं ऐसे थोड़ी है हम हमेशा उठते रहेंगे, नहीं बोलते हैं, उनको धर्म के असली सिद्धांत पता नहीं है, ऐसे सलाह देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि समाज की व्यवस्था ठीक ठीक से चलेगा अगर इस वर्णाश्रम का ठीक पालन होगा। वर्णाश्रम मतलब चार वर्ण के लोग जो चार प्रकार के सही कार्य करें। बोले कैसे, बोले जो प्रथम वर्ण के लोग होते हैं उन्हीं को सलाहकार होना चाहिए, वो वेद शास्त्र के निचोड़ को समझते हैं, वो बाकी कुछ नहीं काम करेंगे, कि पढ़ते रहेंगे पढ़ पढ़ करके दिमाग लगा कर समझेंगे, वही सलाह दे सकते हैं। वही सलाहकार जो ब्राह्मण वर्ग हैं, जो वेद शास्त्र को पठन पाठन करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको समझते हैं, वही सलाह दे सकते हैं। सलाहकार वो वेद के अर्थ को जानते हैं, सलाह दे सकते हैं। और दूसरे वर्ग के लोग क्षत्रिय वर्ग, वो रूलिंग करें, शासन करें, रूलर हों। तीसरे वर्ग के लोग वैश्य, ये व्यापार आदि करें, व्यापार वाणिज्य करें। और चौथे वर्ग के लोग शूद्र, वो श्रमिक काम करें, तब ठीक ठाक चलेगा। और अगर उल्टा हो जाए, शूद्र बन जाए सलाहकार, ब्राह्मण बन जाए श्रमिक, तो होगा क्या, आज के लिए इसी चलता है, टाइटल चेंज मेंज कर करके वो बेचारे कोटा सिस्टम, नौकरी नहीं मिलता है, श्रमिक बनते हैं और श्रमिक कोटा पा करके सलाहकार बनते हैं लो, तो यही होगा उत्पटन का। तो राजा इंद्र ने कहा, अतः मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा, सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत है और ब्राह्मण में श्रेष्ठ है, अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। इंद्र अभी पश्चाताप कर रहा है, उनको समझ में आ गया जो लोग मुझे बताते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं कि दुष्ट है, ये पत्थर के नौका मुझे चढ़ाकर मुझे डुबा के मरवाएंगे, नहीं नहीं मैं निश्चित रूप से अभी खोजूंगा, ढूंढ करके गुरुजी को कहीं से निकाल करके निष्कपट भाव से उनके चरण में सर लगा करके प्रणाम करके उनसे धूल क्षमा मार प्रार्थना करूंगा और धूल स्वीकार करूंगा, ये विचार करता है। जब इस प्रकार विचार इंद्र ने सबके साथ बैठकर किसी को भेजा, तुरंत फोन भी किया होगा और गुरु जी फोन भी नहीं उठाए, वो तो मूड ऑफ था उनका, और किसी को भेजे जाओ देखो कहीं इधर नहीं तो घर में जाकर पता करो। जैसे पता चला, क्योंकि बृहस्पति वो भी तो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो जानते थे। जैसे इनको पता चला इंद्र पश्चाताप कर रहा है, आएगा मुझे माफी मांगने के लिए, ये घर से भाग गए, चुपचाप घर से बिना बताए गायब हो गए, किसी को बोले नहीं, चले गए। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी सभा में पश्चाताप कर रहे थे, तो परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए, अतः उद्देश्य अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान से अधिक आगे थे और समझते थे अभी किस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अदृश्य हो गए। जब चले गए, यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं के सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबानी की, खोजबीन की, किंतु वे उन्हें ना पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरा पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। देखिए, सब कुछ साधन था, तीन लोक का ऐश्वर्य था, बड़े बड़े देवता थे, अमृत था, अब सुने सब सिद्धाचारण गंधर्व नंदन गानन कल्प वृक्ष कामधनु गाय उच्चस्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी क्या क्या नहीं था, वज्र जैसे अस्त्र, सब कुछ होते हुए भी केवल एक कमी हो गया, गुरु अवमानना हो गया। बस जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य अप्रसाद न गति कुतोपी, कहीं गति है ही नहीं, है ही नहीं, खत्म। ये अवमानना हो गया तो भगवत अवमानना हो गया। हरि इसको इंद्र को समझ में आ रहा है, इसलिए वो बेचैन हो रहा है, क्या करूं, कोई देवता हमको ऐश्वर्य संभालते हैं, तो बेचैन हो रहा है। जब पता चला, पता लगा गुरु इस घर में भी नहीं है, कहीं चले गए, अरे रे रे, गया हो तो त्याग दिए हम लोग, गुरु हमको त्याग दिए, इस बात को सोच करके इंद्र इतने खिन्न हो गया, बोला अब टाइम नहीं लगेगा, सारे संपत्ति से खिन्न हो जाऊंगा, क्या करूंगा, और हमारे समृद्धि का कोई साधन भी तो बताने वाला नहीं है, क्योंकि वही हमारे गुरु है, वही पुरोहित है। पुरोहित शब्द का अर्थ है पुरो मतलब सामने खड़े होकर हित करने वाला, आपने को विपद में डाल करके दूसरे को हित करने वाला पुरोहित वो हमारे थे। अब मैं कैसे, कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा गति होगा, कैसे मेरी प्रगति होगा, सोच में पड़ गया। सारे देवता बोला चुप, ये बात किसको नहीं बताना, आपने घर की बात इसको बताएंगे नहीं ना, इसलिए वह घटना हो गया आपने गड़बड़ी से, हम खुद ऐश्वर्य से मत गए, पार्टी में फिक्स हो गए, ऐसे भोग में लग गए कि अपने गुरु को निंदा कर दिए, वो गुरु हमको त्याग करके चले गए, बात किसको पता ना चले। सब जैसे कोई एक बार किसी को बाहर मैसेज ना जाए, बहुत टाइट शेड्यूल करते पता, लेकिन ये जो असुर लोग हैं ना, भले बुद्धि उनका बड़े गड़बड़ी है, असुर है, लेकिन बड़े हाईटेक है वो लोग, जो टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है ना, वो असुर ही होते हैं, हाँ, सुपर हाईटेक वाले थे। उनका पास पता नहीं कौन सा मशीन लगा था वाईफाई का, जद्य भी वहां से सारे डिस्कनेक्शन किए थे, मैसेज किसे नहीं मिल पाए, लेकिन उनको कैच कर लिया, उनका मिनट में मैसेज डाउनलोड हो गया। अरे उनको पता चल गया, बलि आदि असुरों को ये मैसेज पता चल गया कि ये घटना यह हुआ, यद्य भी पूरी प्रयास किए थे देवताओं ने अपने बुद्धि से कि किसी को पता ना चले घटना, लेकिन दूसरे दिन ही उनको पता चले, क्या हाईटेक था उनके पास, उनका एरिया दूसरा था, रेंज से आउट थे वो, लेकिन वो रेंज में भी क्या रडार लगा रखे थे, वो कैच कर लिया उनका मैसेज, कैसे कैच की ये टेक्नोलॉजी उनके पास था, लेकिन पता चल गया। और दूसरे दिन ही और मीटिंग बुलाए और आपने गुरु जी की बुलाए, आचार्य शुक्र को बुला करके बोले गुरु जी अब ये हाल, यहाँ से उनका पार्टी हम विरोधी बोलोगे, अब गुरु त्याग करके चले। अरे इतनी बड़ा घटना ना, हम आज ही फेस ने न्यूज आया, करंट न्यूज भी आया। तब शुक्राचार्य बोले बली गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना गुरु जी, क्या करें, क्या करें, तुरंत सन्यासी होकर चलो, जब गुरु त्याग दिए तो वो कोई नहीं बचा पाएगा, अभी हमला करो। बलि महाराज तैयार बैठे, तुरंत कुछ कर। चढ़ाव कर दिए, अब बिचारे देवताओं को वापस में कैसे पता चला, उनको पता तो चली गया, आए गए, आए तो ऐसे मारे ऐसे पीटे बिचारे, अपने वृद्ध के सामने समन तक उठा नहीं पाए, भागना पड़ा, हटात आ गए, कोई अपने बढ़िया बिस्तरा तक नहीं ले पाए, भागे भाग, कोई उनको बचा नहीं पाए, ऐसे उनको मारपीट कर भगा। अब बेचारे देवता छोड़ कर गए, हा हा करके घूम रहे, क्या करेंगे, और बड़ी महाराज इंद्र पद को लेकर बैठ गए, आसान से हार गए, आसान से हार गए, किसी प्रकार से अमृत पी कर भी जीत नहीं पाए, वज्र आदि सारे अस्त्र होते हुए भी न वज्र भी उनके पास था नहीं, वज्र अभी बनने वाला था, तो ये सब अस्त्र शस्त्र होने पर भी वो जीत नहीं पाए, हार करके चले गए। अब जा करके क्या करे, गली गली भटकते हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके वहां कहे, जाकर पहुंचकर खूब रोना धोना किए, बोले सर देखिए ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने आपने तो उनको एरिया दिए थे कि इसी एरिया में रहे, वहाँ ही रहे, लेकिन वो मानते नहीं, जबरदस्ती आकर के हमारा घर छीन लिया, हमको ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोले, देखो बलि, देखो इंद्र, आपका ये जो दुर्वस्था हुआ है उसका कारण केवल गुरु अवमानना। बोले अभी तक आपने सोच रहे कि अमृत पी रहे, जो झगड़ा चल रहा था, क्योंकि देवता और असुरों का हमेशा झगड़ा चल रहा है, बोले इतने बार युद्ध करते करते हारते थे, हमेशा हारे थे, उन्होंने कई बार हार चुके थे, देवासुर संग्राम से कई बार हारे हैं ना, हारते तो थे, क्यों हारते थे, क्योंकि आपके गुरु आपके साथ थे, असला और उन्होंने बलि ने आपने गुरु अवमानना कर दिया था, पता है ना, बलि ने गुरु अवमानना कर दिया था, इसी वजह से वो हारते गए हारते गए हारते गए, लेकिन उनको एहसास हो गया, और इतने कायदा से उन्होंने अपने गुरु को पटाए, शुक्राचार्य भृगुवंशी ब्राह्मण को ऐसे सेवा किए जैसे उनके कृतदास है, ऐसे सेवा किए, इतने प्रसन्न करके रखे हैं, जिसके कारण से ऐसा उनके समृद्धि है, बोले तेरे स्वर्ग के राज्य क्या है, मुझे लगता है मेरे परमष्टि पद को वे छीन लेंगे, इतने पावर उनका है, ब्राह्मण सेवा से, दान से, ब्राह्मण सेवा से इससे पावर उनको मिला है, वो तो लगता है परमेश्वर पद भी ले लेंगे, तू इससे बच नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने, सुखदेव जी कहते, शुक्र हे इंद्र, तुम्हारा शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए है, अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतना बढ़ा ली कि अब ये मुझसे भी मेरा धाम छीन लेने के लिए समर्थ हो चुके हैं। तो इसी को कहते, मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनदयालणं। अब इसी प्रसन्न होने से कुछ भी कर सकते हैं। त्रिपिष्टकम की गणयत्य भेद्यः मंत्रा भरूणां। तब शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन करने से दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं को भी तनिक भी खातिर नहीं किए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा आदेशित होकर के अपनी चिंता को मुक्त होकर के सभी देवता, तो ब्रह्मा जी ने क्या उनको आदेश दिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ये तो सच है कि राजा, कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण गाय और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा के अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो इन तीनों देवों की सदैव पूजा करते हैं, तो अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं, तो कोई उनको हरा नहीं सकता, ये तीन चीज पर जो उन्हें श्रद्धा रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके कृपा प्राप्त हैं, कौन तीनों है, देवता ब्राह्मण गाय, देवता मतलब भगवान, गो और ब्राह्मण, ये तीनों की कृपा जिसके ऊपर है वो तीन लोक से कोई शक्ति नहीं उनको परास्त कर सके, प्राप्त कर सके। तो अभी ये तीनों को पटा कर रखें अशुभ लोक, इसलिए अब उनका सामना आप नहीं कर सकते। देव शक्ति उनका सामना नहीं कर सकता। देखिए देव शक्ति से भी और पाप क्या है, अगर भगवान की कोई भक्ति करे, ब्राह्मण की भक्ति करे और गो की भक्ति करे, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, ये तीनों की कृपा इतनी बलशाली है, ट्रिपल फेज काम करेगा। बोले कोई शक्ति नहीं उसको पराभव कर सकता, ये ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। बोले मैं क्या कर सकता, अभी ये तीन शक्ति उनके पास है, गुरु ब्राह्मण और गाय, दान रखना इतने प्रसन्न करके रखे हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो इंद्र ने बोले तू कुछ तो बताओ, मर गया हम क्या करें। खूब जब रोने लगे ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी ने बताए, हे देवो मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने के आदेश देता हूं, तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो, वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण है, तुम्हारी पूजा से संपन्न होकर ये तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सकोगे तब वो अपना काम कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया, बोले देखो बिना गुरु से तो काम हो ही नहीं सकता, अभी आप गुरुहीन हो, आप कुछ भी करो काम नहीं बनेगा, क्योंकि तीन फेज मैंने बताया, एक है भगवान पुरुषोत्तम, दूसरे है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब गुरु, दूसरे है गो। बोले गाय को आप खिला पिला संतुष्ट कर देंगे, भगवान की पूजा आज से देवदान अर्जुन का शुद्धिगान कर देंगे, लेकिन ये दोनों के साथ के पूजा के परिपाटी सिखाने वाला गुरु होना चाहिए, ये सिखाएगा तो सही, कैसे कब किस प्रकार करूं, और गुरु ही नहीं है तो भगवान की पूजा कैसे करोगे, गौ की सेवा भी कैसे करोगे, सलाह कौन देगा, सलाहकार ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए आपको गौ और भगवान की पूजा भी करने के लिए भी समर्थ नहीं हो, क्योंकि गुरु आपके साथ नहीं है ना। ब्रह्मा जी आप बताए, आप जगत गुरु है, आप भी गुरु बन जाए, बोले मैं भी नहीं बोल सकता, मैं मेरा पोस्ट अभी मेरे बिजी हूं, मैं भी समाज बोले फिर क्या करें गुरु जी, ढूंढ ढूंढ कर पता लगे, गूगल में सर्च मारे वो है ही नहीं, वो नेटवर्क जोन से आउट, पता नहीं लगता वो कहां, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोले, बोले देखो बिना गुरु को से सिद्धि नहीं हो सकता, आपको गुरु एक बनाना पड़ेगा, बताया किसको गुरु बना ले, कोई अल्टरनेटिव। तो ब्रह्मा जी ने अल्टरनेटिव बताया, बोले देखो आपके जो आदित्य गण में से एक ब्राह्मण जिनका नाम त्वष्टा है, ना है हमारे बिरादर है, चाचा तो है हमारे, बोले उनका जो बेटा है, दो बेटा है, एक बेटा का नाम है विश्वरूप, वो बड़े वेदज्ञ और बड़े पवित्र, बड़े सदाचारी, बड़े संयमी तपस्वी ब्राह्मण है, आप जाओ उनके पास, वो बड़े सच्चे पुरुष है, हमेशा अपने साधन भजन तपस्या में रहते हैं, बड़े विरक्त पुरुष हैं, उनको अपने गुरु वरण करो, तभी आपका काम बन सकता है, जाओ। ब्रह्मा जी से सलाह पा करके वो एड्रेस नोट कर लिए फटाफट, नोट करके इंद्र चंद्र आदि जो बड़े बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं देवताओं के, सीधा फ्लाइट बुकिंग किए, जो भी किए सीधा अपना अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर होता है उनका, सीधा आए जहाँ विश्वरूप थे, वहीं से देख लिए होंगे सर्च कर आके विश्वरूप था, वहीं पहुँचे। अब विश्वरूप के जहाँ बैठे थे वहाँ पर विश्वरूप हमेशा साधन भजन में रहते हैं, वहाँ पहुँचे, पहुँच करके विश्वरूप के पास बोले, बेटा क्योंकि विश्वरूप उनके भाई है, त्वष्टा उनके बेटा है, मतलब उनका क्या होगा, उनके भतीजा न क्या, भतीजा लगे हो बड़ा क्या, तो इंद्र आदि देवता उनके पितृव्य हैं, उनके चाचा हैं, है? कोई बड़े पापा कोई छोटे पापा, क्या बोलते हैं आप, चाचा छोटे पापा को, बड़े पापा को, दादा हाँ, ताया हाँ, कोई ताया कोई चाचा, ये सब लगेंगे। अब वो लोग सारे आकर के भीड़ जमा कर बैठेंगे, यो बेचारा बैठे थे आसन में, अब सारे ताता चाव ताऊ चाप चार सब आके पहुंच गए। ईश्वर बोले क्या हो गया, सब अपना अपने गाड़ी में आए, पूरे पार्किंग लट फूल। विश्वरूप आश्चर्य क्या घटना है, सारे आए। अरे वो विश्वरूप उठ करके बेचारे मंत्र प्रणाम करने से, वो आकर फटाफट दंडवत प्रणाम किए। विश्वरूप हड़बड़ा गए, बोले ताऊ हो क्या गया, चाचा हो क्या गया, ना अभी ये बात छोड़ो ताता चाऊ का, हाँ अभी ताऊ चाचा के बात छोड़ो, अभी आप हमारा काम बनाओ, हो क्या गया, आप मुझे क्यों ऐसे सम्मान करते हैं, ना देखो अब बात ऐसा आकर अटका हुआ है, आप ऐसे मत समझो कि हम आपको सम्मान करने के लिए लायक नहीं, नहीं 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 नहीं, हम हैं बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पोस्ट पोजिशन में बड़े तो हैं, मानते हैं संबंध में बड़े हैं, लेकिन केवल उम्र में संबंध में पोजिशन में बड़े होने से काम नहीं चलता। हाँ सम्मान तो उनको होना चाहिए जो ज्ञान में बड़े, भले उसका उम्र संबंध कुछ ना हो, अगर समझदारी में वेद ज्ञान में अगर बड़े हैं तो ही सम्मानीय है, उनको सम्मान करने से बनना चाहिए, ये वेदार्थ है, वो तो आप जानते ही हैं ना। लेकिन लोक मैंने लोक के बाद छोड़ो, अभी लोक हो गया हमसे, तुझे क्या पता, तू जो पेपर पर पढ़ता ना घर में बैठा, हम घरवाड़ी से छीन गया है ना, हम भूल रहे घूमने बाहर में, तो फिर क्या इस नारे परेशानी बहुत हुए, रोए सब, रो धोकर बोले बेटा अब ऐसा समय नहीं है कि ऐसा मत करो कि क्यों हम प्रणाम कर रहे हैं, अभी हम प्रणाम करेंगे, तुझे पर छुएंगे, तुझे अभिषेक करेंगे, ना क्या हो गया, ना तू बेटा हमारे गुरु बन जा, अब हाथ पर जोड़ के पीछे पड़ गए, सारे देवताओं घेर करके सारे ताऊ चाचा मिल करके ऐसे उनको खुशामत किए, ऐसे उनको ऊपर चढ़ाए कि विश्वरूप जी बेटा मान जा रहे, अब देखो हमारा ये हाल है, ये हाल है, अब क्या करे, खूब नवरा होकर प्रार्थना करने लगे। जब सभी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे और खूब समझाए, बोले ये मत समझो कि हम आपको गलती से हमको प्रणाम करते हैं स्वागत करते हैं, नहीं, क्योंकि हमसे ज्ञान में बड़े हो, तपस्या में संयम में बड़े हो, तो इसलिए आप सम्मानीय हो, पूज्य हो, तो इसलिए बिरा बेटा हमारा काम कर दो, हम मर रहे हैं, खूब बोले। तो उनके अध्याय पूरा हो गया, सारे खून लिए, विश्वरूप आपने कुशासन पर बैठे, बोले बैठिए बैठिए, उनका पास तो बेचारे तपस्वी थे, कुछ है ही नहीं था सोफा उफा, तो बोले ये आसन वहीं बैठ जाओ नीचे, वो भी बोले नीचे नीचे बैठ जाएंगे, हाँ अभी तो तू गुरु है, तू ऊपर बैठो हम नीचे बैठेंगे, बैठ गए सब। तो विश्वरूप ने बोले देखो ये समाज में बड़े प्रसिद्ध बात है, सारे शास्त्र में है, ये जो पुरोहित कर्म है ना सबसे गर्हित कर्म है, इसका पुरोहित बनना सबसे नीच कर्म है। अब देवताओं ने पता नहीं राजी होगा नहीं लगता है, ये तो पहले से इसी बात कह रहा है पुरोहित काम वर्हित कर्म। बोले रामायण में वर्णन आता है, कुलगुरु वशिष्ठ स्वयं खोलकर बोलते हैं कि मैं तो कभी नहीं राजी हुआ था पुरोहितगिरी करने के लिए, लेकिन पापा ने मुझे बताया, बोले अरे मूर्ख ये सूर्यवंश के पुरोहित बनो, पिताजी पुरोहित करो ना, मैं जानता हूँ ये छोटा कर्म है, लेकिन पता नहीं अगले कहीं कुछ पीढ़ी के बाद में साक्षात परम ब्रह्म भगवान स्वयं बेटा बन कर आएंगे, उनको नामकरण चुड़ाकरण कर्ण भेदन सारे क्रिया तेरे गोद में ठकर होगा। रे बाप रे बाप, इसी लोभ के कारण 25 पीढ़ियों से गुरु मन पुरोहित बने बैठे, नहीं तो पुरोहित बोले क्यों पुरोहित काम खराब है, बोले पुरोहित काम बताओ मत भारी खराब काम है, बोले क्यों, बोले पुरोहित के जजमान होते हैं और जजमान का सभी प्रकार से अग्र में खड़े होकर हित करने का काम पुरोहित को होता है, हर प्रकार से सहायता करना, कोई विपद में संपद में हित करना, उनको सुरक्षा प्रदान पुरोहित का काम है, इसे हित करना पुरोहित, हर प्रकार से हित करना पुरोहित का काम है। तो करने के लिए शास्त्र विधान के अनुसार उनको उपाय बताएगा, भाई देखो अभी ये दशा तुझे लगा है, राहु शनि केतु जो भी लगा है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, तो उसको निराकरण के प्रायश्चित विधान के लिए इतने सोने चाहिए, चांदी चाहिए, ये पात्र चाहिए, ये कार्य चाहिए, ये फूल, ये फल, ये हो, नियम के अनुसार करने के लिए जो विधि बताएं, तो जजमान कहेगा पंडित जी लोभ बहुत हो गया, थोड़ा बजट कम करो। अब वो मानेंगे, वो बोलेंगे कि वो तो पढ़ाई कर रहा है अपने कमाई करने के लिए, लास्ट में बोलेगा कि सुपुरोहित का होता है, और नियम ही वही है, जो सर पूजा उजा कराएगा, जो ठीक ठीक से अगर वेद की नीति के अनुसार कराए, सवे सामग्री चाहिए, वो सामग्री कोई देने के लिए तैयार नहीं है, सामग्री के लिए नहीं, नया पैसा कोई खर्च नहीं करेंगे, और फल पूरा पूरा चाहेंगे, बेचारा पुरोहित क्या करें, सामग्री के पूरा लिस्ट बताते हैं, बोलते हैं ये नहीं हो सकता, कम करो, ये कैसे हो सकता है, आप इतने लोग मत करो, हाँ हम देंगे दक्षिणा आपको देंगे, ये सब इतना क्या बता दिया, ठीक करो लिस्ट बनाओ ठीक से, अब क्या करें, नहीं मानने से गाली देता है, मानता नहीं, आप कांट छांट करेंगे, कांट छांट करके जब करेगा उसको बोलेंगे भाई देखो कुछ नहीं तो 5 मीटर तो कपड़ा लाओ, पुरुषोत्तम भगवान की अर्चना है, सत्यनारायण पूजा होगा, चाहिए ना सही, हाँ हाँ कपड़ा लाएगा, ऐसा थोड़ी है, बोलती अरे अब वो लिस्ट लिखाएंगे, बेटा का शादी है, अब पूर्व पंडित जी ने देख करके बोल दिया उसका लग्न में ये दोष है तो गड़बड़ हो सकता है ना, क्या करें, नायक की पूजा करना पड़ेगा, ग्रह शांति सत्यनारायण पूजा कर देने से दोष प्रायश्चित हो जाएगा, तब शादी ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ कर लेंगे उसी दिन कर लेंगे, हाँ कर लेंगे पहले दिन कर लेंगे, तो सामग्री लिखवा दिए, सामग्री जो लिखवा दिए पहले दिन से युक्ति क्या है, नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, ढंग से लिखो ये क्या, उसके मुंह को देखेंगे जजमान के, भैया ठीक से चाहते ना, नहीं 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 पूरा चाहता हूँ लेकिन ये लिस्ट नहीं, एडिट करो उसको, अब क्या करे, दोबारा लिख करके चश्मा लगाएंगे बैठेंगे, क्या कांड छांट करूँ, शास्त्र के अनुसार तो यही सामग्री चाहिए, अगर ठीक से करूँ ये सब को समुचित क्रिया उनके निराकरण करूँ, उसके लिए सब चाहिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कांड छांट करके अल्प बहुत में जो लिखे उसको भी लाएगा नहीं, तो पति पत्नी मार्केटिंग में ले गए, अब बोले शादी के लिए मार्केटिंग भी करेंगे, बेटा के शादी है और पूजा के लिए भी पंडित जी ने लिखे लिस्ट, उसको भी ले गए साथ में, वो भी ले आएंगे, तो पहले गए क्लॉथ मार्केट में, कपड़े मार्केट में जाएंगे, बोले पहले तो बेटा का शादी हमेशा थोड़ी होता है, एक बार तो करना, अब सबसे कीमती कपड़ा दो, बोले सबसे 5,000 वाला हाँ दो, उससे ज़्यादा आप रहने उससे ज़्यादा भी दो, यही से सूट खरीदे, अब खरीद कर पैक किए, फिर शर्ट वो आ रहे थे, पत्नी बोला और पंडित जी बोले थे ना वो सत्यनारायण के लिए भी कपड़ा चाहिए ना, अच्छा 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 और ले लो, बोले और 2 मीटर दे दो, और 4 मीटर 2 मीटर दे दो, किसके लिए, ना ये तो भगवान के लिए चाहिए, कपड़ा दुकान वाला सोचा तो बेटा के लिए इतने कीमती वाले, भगवान के लिए तो और कष्ट लेंगे, वो निकाला बोले ये दे दो, बोले ये अरे सुना नहीं क्या, भगवान के लिए चाहिए ना तभी तो दे रहा हूँ, अरे पागल कहीं के, भगवान के लिए चाहिए ये कपड़ा थोड़ी ना, अब बेटे के लिए इसने भगवान, नहीं 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 तू कब से दुकानदारी कर रहा है यार, भगवान के लिए उचित कपड़ा तुझे पता नहीं, भगवान के लिए कौन सा कपड़ा होता नहीं, ये ही तो भगवान के लिए 8 रुपया वाला मार्किन कपड़ा जो होता है मीटर वो चाहिए, ये भगवान के लिए, भगवान उसको यूज करते, बोले भैया ये क्लॉथ मार्केट में ये तो ये नहीं मिलेगा, अब जाओ फुटपाथ में चांदनी चौक में यहाँ मिल सकता है, तो वहाँ गए वो क्या करें, वहाँ गए वहाँ बोले 2 मीटर गए 1 मीटर में ले चले तो 8 रुपया वाला मार्किन कपड़ा ले लिए भगवान के लिए, बोले सुपारी चाहिए 10, सुपारी वाले के पास गए बोले सुपारी दे दो भगवान के लिए, अच्छा अच्छा अरे पागल भगवान के लिए चाहिए ये क्या दे रहे हैं, हमारे हमारे घर के लिए थोड़ी चाहिए, हम पान नहीं खाते हैं, हमको चाहिए ना भगवान के, ना अरे भगवान के लिए, अरे बिल्कुल सड़ा हुआ रिजेक्टेड जो माल वो भगवान के लिए होता है, तो उस निकाल कर दिए, उसको भी लेकर आए, वो पलो पन्नी में बांध करके सारे सामान शादी के मार्केटिंग उसके अंदर डाल के घर में लाए, घर में ला करके वो दूसरे दिन पूजा बैठे, पंडित जी आए सारे सब मुर डाले रंगोली फंगोली डाल कर बैठे, अब भगवान को आवाहन किया, आवाहन संस्थापन सन्निधान सकलिक्रम, अब आवाहन करके बैठा दिए, आसन पादासन वस्त्र, मैं बोला था ना कपड़ा लाए ना नहीं वस्त्र दो, हाँ ये कपड़ा तो लाए था ना, लाए तो था, ढूंढो और ढूंढ ढूंढ कर परेशानी, कोई नीचे कहीं पड़ा है, ऊपर से तो सारे VIP मार्केटिंग हुआ है शादी के लिए, और ठाकुर जी तो VIP है ही नहीं, उनके कपड़ा तो वही पड़ा है, ढूंढ ढूंढ कर घंटे भर परेशानी, लाया तो था पता नहीं कहीं गिर गया कि कहाँ है पता नहीं, मिल नहीं रहा है, तो ब्राह्मण बोले चलो कोई बात नहीं अब क्या करे, लाओ 10 रुपया रखो, 10 रुपया रखे, बोले काम चला बैठ जाओ, और दोनों पति पत्नी बैठे, और क्या करे भगवान तो बैठे वस्त्र पहनने के लिए, दस रुपया रख करके एक धागा निकाल करके रख दिया, वस्त्राभावे सूत्रम दद्यात। अब क्या कर वस्त्र नहीं, वस्त्र के अभाव में सूत्र से काम चलाओ, एक धागा डाल दिया, एक लाल धागा लाया था ना डोली हाथ में बांधने वाला, इसमें खींच करके एक धागा डाल दिया। भगवान बेचारे काम चलाएंगे धागा में। अगर हम लोग कभी चले गए जल्दी से, गमछा भूल गए और यहाँ स्नान करना पड़ा, बोले कोई भाई वस्त्र नहीं है धागा में काम चला लेंगे, चलेगा क्या? नहीं, भगवान को चलाना पड़ेगा, वो चला सकते हैं, वो क्या करेंगे, भगवान तो बेचारे ऐसे ही बोलेंगे नहीं कुछ। तो उनके लिए आजकल संसार में पूरी तरह से ठगते हैं भगवान, बेचारे कुछ बोलते नहीं ना, लेकिन बोलते नहीं कुछ, लेकिन सारे नोट करते हैं, देखते हैं सारे। जब भगवान विग्रह रूप में आते हैं तो उनका धर्म है असहाय रूपम, असहाय बनकर के भगवान आते हैं, क्योंकि सेवा लेना चाहते हैं, नहीं तो उनको सेवा तो कोई पड़ी है। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, हजारों हजारों सकड़ों सौभाग्य की देवी लाइन में खड़े हैं सेवा करने के लिए। हम जैसे गाय के गोबर का सेवा क्या जरूरत है उनको, मार्किन के पढ़ा देंगे उनको, पीताम्बर धारी है अम्लान वस्त्र है, लेकिन हम जैसे नालायक के सेवा किए बिना हम सुधरेंगे नहीं, हमारे सेवा स्वीकार करने के लिए जड़ वस्त्र के रूप में विग्रह बन करके सामने आए असहाय रूप में। आप जब पहनाओगे पहनूंगा, आप खिलाओगे तो खाऊंगा, आप सुलाओगे तो सोऊंगा, आप नहलाओगे तो नहाऊंगा, पूर्ण असहाय रूप में हमारे सेवा लेने के लिए। अब देखते हैं कैसे सेवा करते हैं, तो हाँ ऐसी सेवा करते हैं, नोट हो रहा है सारे नोट हो रहा है, यही हमारे सब। अभी पुरुषोत्तम मास में कई जगह में इसे पूजा होता होगा, जाकर देखना ऐसी चलता होगा। तो इस प्रकार इसलिए पुरोहित कर्म बिचारे लिस्ट सही प्रकार से दो तो जजमान गुस्सा होता है, और नहीं दो तो फल बलगाने आशा रहता है, तो क्या करें, तब भी गाली देता है कि मुझे ठग दिया, कोई काम नहीं बना, तो पूजा क्या ग्रह शांति नहीं हुआ, अरे ग्रह शांति कहीं हुआ, तो कपड़ा तो लाया नहीं, ग्रह शांति क्या करो, ये पूजा से कैसे शांति होगा अशांति कार्य में। तो इसलिए पुरोहित काम बड़े उत्पटांग है, दोनों तरफ से मरेगा, नहीं करो तब दोषी, करो तभी दोषी। तो इसलिए पुरोहित काम नहीं करना चाहिए। अब जब ऐसे बताया विश्वरूप ने, सारे देवताओं काम गए, बोले रे बेटा दोबारा प्रणाम किए रे मान जा रे। तब विश्वरूप बोले अब रो मत, मैं मानता हूँ पुरोहित काम बड़े निंदित कर्म है, गर्हित कर्म है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे ताऊ चाचा इतने बड़े बड़े पोस्ट पोजिशन वाले, दुख में जर्जरित होकर के मेरे सामने आपको प्रार्थना करते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मेरा मान धर्म नीचे चले जाए, लेकिन आप मेरे पितृव्य हैं, वो ऐसे तकलीफ में आकर होते हैं, मैं आपके उपकार करने के लिए ये निंदित कर्म भी स्वीकार करूंगा। अरे राजी हो गया, राजी हो गया कि खूब खुश हो गए, तुरंत वरण किए, पानी ला कर उनके चरण धोए, चरणाद कुछ शर्म छिंचे और कपड़ा पगड़ी बांध दिए, तू आज से हमारा आचार्य पोस्ट में आ गए। विश्वरूप का आचार्य वर्ण की, आचार्य वर्ण करके सारे देवता बैठ गए, बैठ करके बड़े ध्यान से अब उनसे गुरु रूप में मान के सारे अनाउंस कर दिए, नोटिस बोर्ड में लगा दिया, एडवर्टाइज कर दिए, व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिए, नाउ न्यू अपॉइंटेड गुरु विश्वरूप सन ऑफ तोष्टा। अरे है तुम्हारे भतीजा, अरे भतीजा भतीजा छोड़, काम बनने वाला है, चुप सब, नो ऑब्जेक्शन, इंद्र नो ऑब्जेक्शन किया, सबको प्रणाम करना पड़ेगा भाई। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ कहते हैं, बोला देखो इंद्र मैं तुझे बताता हूँ, विश्वरूप जो है बड़े काम के चीज, इतने तपस्वी हैं, इतने साधना किया है मंत्र को, वो काम कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी यही है ना सर, क्या है ना गड़बड़ी यही है, वो आपके भतीजा तो है, लेकिन पता है ना आपके भाभी जी कौन है, पता है कौन है ना, उनके ओर से हैं, उनके सिस्टर हैं ना, हाँ है, तो इसलिए वो मामा के माँ के प्रति भी थोड़ा उनके स्नेह तो रहेगा ही, बेटा है माँ के प्रति थोड़ा झुकाव है, तो माता के झुकाव के प्रति कभी कभी अपने मामाओं के काम भी कर लेता है। मामा कौन है? असुर लोग, असुर लोग मामा। तो इसलिए आप उनको सहन कर लोगे ना, ना गुरु जी ब्रह्मा जी अब घर वाड़ी कुछ ही नहीं है, खाने के लिए दर भटक रहे हैं, आप वो सब सहन कर लेंगे, नाउ एडजस्टेड। वहां से सब राजी होकर आए तो वहां बोले देखो अगर सहन कर लोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे आपका गुरु बनेगा तो काम तो आपका ही करेगा, अच्छा लड़का है, लेकिन क्या करे, मामा तो उनके ही है ना, निजी सगा मामा है, तो कभी कभी उनके काम भी कर सकता है, तो आपको उनको सहन करना पड़ेगा। इंद्र बोल, पहले ब्रह्मा जी ने बता दिया, बोले देखो ये मैं बताता हूँ, सावधान, बाकी कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट आपके गुरु बनने के लिए भी है ही नहीं मार्केट में, एक ही है, और उसका यही गड़बड़ी है कि माँ उनके उनके तरफ का है, वो सारे मामाओं आपके आपके हैं, तो इसलिए उनको संभालना पड़ेगा ना। ठीक है, संभालेंगे और क्या, तो सब संभाल करके एडजस्ट करके गुरु बनाए, अब विश्व रूप को वर्णन करके ले करके जब गुरु आसन में बैठा दिए सारे विश्व रूप ने, तो फिर आपने पिताजी से, पिताजी तो आदित्य थे ही, देवता थे, माँ से सबसे आशीर्वाद ले करके और उनके भलाई करने के लिए, देवताओं के सुख पहुँचाने के लिए, उनको उचित काम कराने के लिए उचित किया था, उनके साम्राज्य उनको वापस चाहिए, उनको धन समृद्ध वापस चाहिए, इंद्र राजा बन करके बलि बैठा है, उनसे छीन कर उनको देना था, तो इसलिए विश्वरूप ने उनको बोले बोले हे देवताओं, हे इंद्रादि देवताओं, यद्यपि मैं नाम मात्र के लिए एक छोटा बालक हूँ, आपसे बहुत जूनियर हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं मेरे मंत्र साधन के बल से, मेरे तपोबल से, मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ आपका हित कर डालूंगा। वो कितने बड़े आपने गुरु जी को प्रसन्न किए हैं, गो देवता ब्राह्मण को पूजा सब किए हैं, लेकिन मेरे मंत्र साधना के बल से आगे नहीं जा सकेंगे। मैं मेरे मंत्र शक्ति से, मेरे साधन बल से, मेरे तप अध्याय बल से, साधन बल से उनसे छीन करके संपत्ति आपको दिला दूंगा। अरे देवता लोग बोले अरे जय जयकार के, खुश हो गए, बोले लेकिन इसके लिए आपको ही मेरा साथ देना, हम तैयार हैं, हम तैयार है, कुछ नहीं, गामछा पहनकर बैठे हैं, जो बोले सो करेंगे। तो बोले ठीक है, तैयार हो जाओ, कौन आपके कर्ता बनेगा? हाँ इंद्र बोला मैं ही बनूंगा, आपको बनूंगा। तो सारे देवता उनको बोले हाँ यही बनेंगे सर। तो सार गए, बोले आ जाओ, पहले आकर के स्नान करना पड़ेगा, बड़े विशेष विधि वर्णन होता है, कोई इस प्रकार के इतने बड़े कार्य साधन करने के लिए, इतने बड़े भय से बचने के लिए ये भागवत विधान है, शास्त्र विधान है, इसे मंत्र सिद्धि कोई करता है विशेष भय से बच सकते हैं, कोई भय नहीं रहेगा, कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा जो सिद्धि नहीं हो सकता, संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकता है, भय से बच सकता है, सब कुछ हो सकता है मंत्र बल से। अक्सर तीन बल होता था, मंत्र तंत्र जंत्र। आजकल मंत्र तो गया, कोई अब मंत्र जानने वाले कोई ब्राह्मण भी नहीं रहे, मंत्र के ऊपर श्रद्धा टूट गया, मंत्र भी गए, तंत्र शास्त्र भी गया, तंत्र के ऊपर भी कोई तंत्र करने वाले नहीं गए, अभी ले देख रहे थर्ड क्लास जंत्र शास्त्र पर पढ़े हैं, इसलिए जंत्र में पढ़े हैं। अब जंत्र से तो अनाज नहीं निकलेगा, नट बोल्ट हम खाएंगे नहीं, अब आगे चलकर क्या होगा, जंत्र के परिणाम सब भोगेंगे, है ना नहीं? अन्न जल के जब हाव महसूस होगा तो जंत्र के परिणाम भोगना पड़ेगा, लेकिन मंत्र शक्ति से कुछ भी हो सकता वो इतने सुख में। तो ये मंत्र की सिद्धि करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को भी जब कर्ता बनकर बैठना पड़ा, तब वो सिद्ध ब्राह्मण विश्वरूप ने अपने गुरु बन करके उनको सब क्रिया सिखाए। जब तक कोई उचित मार्गदर्शक हर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सिखाने वाला ना हो, कैसे बैठना है, कैसे नहाना है, कैसे पहनना है, कैसे क्रिया मुद्रा मंत्र उच्चारण व्यवहार सब कोई सिखाने वाला ना हो, साथ में बैठे बैठे कर नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तभी गलती हो सकता है, क्योंकि ये मंत्र में ये बड़े दोष रहता है कि प्रत्यवाय दोष रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए पास में बैठे बैठे करके बिल्कुल देख देख करके सही करते करते सही प्रकार से कोई आपके मार्गदर्शन नहीं करे तो हम अगर बैठ गए हम भी कर लेंगे, कर लो थोड़ा सा कहीं 1% गलती हो गया आपका विनाश हो जाएगा। अभी आगे प्रसंग आएगा इस घटना में तो उनके पिताजी का भी हाल हो जाएगा। तो लेकिन विश्वरूप इतने एक्सपर्ट सिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने इंद्र को बैठा करके एक एक डिटेल काम करवाया। बोले पहले पवित्र जल में स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, सिलाई बिना किया हुआ अमड़ान ऐसे वस्त्र पहनो, तिलक आदि धारण करो, व्रत धारण करो, उपवास रखना पड़ेगा, कुशासन शुद्ध आसन में बैठो, उत्तर मुख होकर बैठना पड़ेगा, आचमन करो, अब अपवित्र पवित्र वा मंत्र पवित्र मंत्र पढ़ो, फिर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु तीन बार भगवान स्मरण करो, फिर कुश पवित्र एक कुश घास में पट मुद्रिका बनाकर पवित्र धारण कर पवित्र धारण करो, फिर आसन शुद्धि भूत शुद्धि अब मातृका शुद्धि अंतर्मातृका बहिर्मातृका दिग्बंधन ये सब करना पड़ता है। ये सब करने के बाद में फिर न्यास करना पड़ता है, अंगन्यास करन्यास हृदय आदि न्यास। तो न्यास करने जो सब जानते ब्राह्मण कर्म कांड थोड़ा बहुत जानते होंगे वो, उसमें उन्होंने यही मंत्र को बोला, बोले सबसे पहले अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, उन्हीं को उल्टा ओम से लेकर के यह पर्यंत 8 अक्षर में ऊपर से अंगुल्याग्र से लेकर के अंगुष्ठा से सिर पर्यंत एक एक अंग को छू करके अष्टाक्षर में अष्ट जागा पर अष्ट अंग में न्यास करो, फिर उल्टा यह से लेकर के ओम पर्यंत उल्टा में फिर अष्टाक्षर में न्यास करो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, फिर दूसरे तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र में 12 जगह पर उसी के ऊपर से न्यास गतिपात पर उल्टा न्यास करो, फिर ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः में ये मंत्र से अस्त्राय पट दिग्बंधन करो, दिग्बंधन करो हृदयादि न्यास अंग न्यास करन्यास सब न्यास करने के बाद में आसन भूत करके बैठो। बैठने के जब हो गया सारे मंत्र को धारण करना होता है क्योंकि मंत्र को सिद्ध करने के लिए स्वयं शुद्ध होना पड़ेगा पवित्र होना पड़ेगा, मंत्र शक्ति को धारण करना पड़ेगा, सारे दिग्बंधन द्वारा मंत्र को धारण करके मंत्र द्वारा शरीर को शोधन करना पड़ेगा, शरीर के अलग अलग अंग में जोड़ों में सब जगह मंत्र शक्ति को डिपोजिट करना पड़ेगा, मंत्र शक्ति को लगाना पड़ेगा वहां से रखना पड़ेगा प्रति जगह पर रख करके धारण करके तब जा करके ये पूरा क्रिया मुद्रा सर हो जाने के बाद में तब उनको शिक्षा देने में देंगे, ये महाविद्या सिखाएंगे, वो नारायण कवच की उपदेश करेंगे। वो नारायण कवच की उपदेश भगवान की सबसे प्रिय भगवान पुरुषोत्तम के कवच है श्री नारायण कवच। अभी तक संसार में जितने कवच समझते हैं ना आपको रक्षा करने वाले जो बॉडीगार्ड तो आदमी को भी कहते हैं कवच कहो रो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना, सील है सील बोलते हैं, जब सील वो सील को धारण करेंगे ये नारायण कवच ऐसे कवच है और ये 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ कवच है। इस महाविद्या ये महाशक्ति महाकवच को उनको साध्य कराएंगे, हो सके तो कल नारायण कवच को कल उनको थोड़ा बहुत करवाएंगे। अभी समय आज का हो चुका है तो अब आज की कथा ही समाप्त करते हैं, काल से समय पर आएंगे। तो जब हम शुरुआत में पुरुषोत्तम वंदना करते हैं जगन्नाथ अष्टकम और सौराग्र पुरुषोष्टकम, मैं देखा कि आप लोग को पढ़ नहीं पाते ढंग से, आप लोग का आपको मोबाइल में हिंदी में है डाउनलोड करके लाइए, नहीं तो आप कॉपी प्रिंट आउट करके लेकर नहीं आइए तो आप आसान से पढ़ सकते हैं, और कोई एक दिन उसका थोड़ा भी कोशिश करेंगे कुछ अर्थ करने के लिए, लेकिन कम समय में क्योंकि कथा को लेट हो जाए उसको करेंगे। हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की भगवान पुरुषोत्तम देव की श्री जगन्नाथ भगवान की हिताय गौर हरि सिमानंदे।